तारीख 26 मई दिन मंगलवार। नमस्कार भारत में स्वागत है आपका, मैं हूं अनुराग शर्मा। नेपाल में विनाशकारी भूकंप का एक महीना पूरा, लेकिन पैसे की कमी बन रही है राहत में दिक्कत।
I don't think we have received any money from the outside world. Very little. Whatever money the government is using now is all from domestic resources.
एसीबी पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से केंद्र और दिल्ली सरकार की जंग में नया मोड़। अदालत के फैसले का आखिर क्या होगा सर?
राज्यपाल ने अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया, लेकिन साथ ही जो दिल्ली के सीएम है उनको भी देखना चाहिए कि इसका सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है।
साथ में खबरें खेल की दुनिया से भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। नेपाल में विनाशकारी भूकंप के एक महीने बाद भी मदद के लिए जरूरी रकम नहीं जुटने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत ने बीबीसी से कहा कि उनके देश को विदेशों से सिर्फ 10% राशि मिली है, जबकि 90% राशि नेपाल के लोगों ने ही जुटाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भूकंप से हुए नुकसान से उबरने के लिए नेपाल सरकार जो कुछ कर रही है अपने बूते पर कर रही है। चीन ने साउथ चाइना सी के ऊपर अमेरिका के एक खुफिया विमान की मौजूदगी पर अमेरिका से अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। साउथ चाइना सी में चीन निर्माण कार्य कर रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने अमेरिका की इस हरकत को गैर जिम्मेदार और खतरनाक बताया है। चीनी द्वीप पर अमरीकी खुफिया विमान की वजह से बात आसानी से बिगड़ सकती है। चीन इसे अमरीका की उकसाने वाली कार्रवाई मानता है और इसका विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी इलाकों और उत्तरी मेक्सिको में चक्रवाती तूफान की वजह से कम 19 लोग मारे गए हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। रूस की सेना एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसमें लगभग 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में लगभग 12,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर पश्चिमी देशों के साथ रूस के बढ़ते तनाव के मद्देनजर इस सैन्य अभ्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यूरोपीय यूनियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लाड जंकर से मुलाकात करके यूरोपीय यूनियन में सुधार के मुद्दे पर चर्चा की है। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ब्रिटेन के लोग यूरोपीय यूनियन में अपनी स्थिति को लेकर प्रसन्न नहीं हैं। ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के रहने न रहने के मुद्दे पर वर्ष 2017 के आखिर तक जनमत संग्रह कराने का वादा किया है। बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष ब्लॉग लिखने वालों पर हमले के आरोप में एक इस्लामी चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय का कहना है कि पुलिस के अनुरोध पर अंसरुल्लाह बांग्ला टीम यानी एनबीटी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश में इस वर्ष 3 ब्लॉगर्स की हत्या हुई है, जिसके पीछे अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का हाथ माना जाता है। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में 6 लोगों पर आरोप लगा है कि वे अपने एक परिजन के शव को टैक्सी में लेकर घूम रहे थे। इस व्यक्ति की मौत इबोला वायरस की वजह से हुई थी। इबोला वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी 6 अभियुक्तों को अलग थलग रखा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में स्वागत है आपका। इस कार्यक्रम को आप bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं अनुराग शर्मा। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किए। इस खबर के बारे में करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले बात नेपाल में भूकंप राहत में आ रही अड़चनों की। नेपाल में विनाशकारी भूकंप आने के एक महीने के बाद भी हालात बहुत बुरे हैं। अब तक 8,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत कामों में सुस्ती के लिए नेपाली सरकार की आलोचना हो रही है। नेपाल सरकार का कहना है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बहुत कम मदद मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि जरूरत का 1/4 धन ही उसे मिल पाया है। ऐसी स्थिति में नेपाल में चल रहे राहत कार्यों को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पूरे ब्यौरे के साथ संदीप सोनी।
रात भर भूखे रहे, बारिश में भीजी कब से खाना खत्म हो जाता है।
ये आवाजें उन लोगों की हैं जो नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद अपनी कहानी बताने के लिए किसी तरह जीवित बच गए, जिन्होंने 25 अप्रैल के बाद लगभग एक हफ्ते तक भूकंप के न जाने कितने झटके झेले, जिन्होंने बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे रात बिताई, जिन तक सरकारी मदद ठीक से नहीं पहुंच पाई। भारत समेत दुनिया भर से नेपाल के लिए मदद पहुंची, लेकिन एक महीने के बाद भी नेपाल में भूकंप के गहरे निशान लोगों के चेहरे पर भी साफ नजर आते हैं। इतने गहरे कि संयुक्त राष्ट्र को कहना पड़ा नेपाल के लिए उतना धन नहीं जुटाया जा सका जितने की जरूरत थी।
The flash appeal we launched over a month ago was for $423 million, and that covered all the key emergency sectors for a 3-month period.
नेपाल में संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी जेमी मैकगोल्ड्रिक कह रहे थे, हमने एक महीने पहले लगभग $44 करोड़ की अपील की थी, लेकिन अभी तक एक चौथाई रकम भी नहीं जुटाई जा सकी है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इतना कि जिससे संकट से प्रभावित तरीके से निपटा नहीं जा सकता। नेपाल सरकार की इस बात के लिए आलोचना होती रही है कि उसने आपदा से निपटने में उतनी फुर्ती नहीं दिखाई जितनी उसे दिखानी चाहिए थी, लेकिन नेपाल सरकार का दावा है कि विदेशी राहत एजेंसियों ने सरकार की अनदेखी की, इसकी वजह से राहत और बचाव कार्यों पर बुरा असर पड़ा।
I don't think we have received any money from the outside world. Very little. Whatever money the government is using now is all from domestic resources.
सरकार का बचाव करते हुए नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत कह रहे थे, मुझे नहीं लगता हमें विदेशों से धन मिला है, जो मिला है बहुत कम है। नेपाल सरकार जो कुछ कर रही है अपने बूते पर कर रही है। राहत कोष की 90% राशि नेपालियों ने जुटाई है, बमुश्किल 10% धन बाहर से मिला है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल के सामने अब एवरेस्ट जैसी चुनौती है, जहां कई गांव के गांव तबाह हो चुके हैं, जहां शहरों में न जाने कितनी इमारतें भूकंप के झटकों के बाद बुरी तरह झुकी हुई हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं, जहां अपने आशियानों से उजड़े लोगों को बसाने में बरसों लग जाएंगे, जहां न जाने कितने लोगों के सपने टूटे हैं, लेकिन हौसला अभी बाकी है।
हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल को पैसा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नेपाल सरकार के पास दोबारा पुनर्निर्माण का कोई ठोस खाका नहीं है। बात दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बीते 100 दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ फैसले लिए हैं तो उन्हें पार्टी और पार्टी के बाहर आलोचना का भी सामना करना पड़ा। हालांकि उनके तेवर अब भी पहले जैसे ही हैं। कल शाम दिल्ली में सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हुए कार्यक्रम में भी वो केंद्र सरकार को नसीहत देना नहीं भूले। निखिल रंजन की रिपोर्ट।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर अपनी उपलब्धियां गिराने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जमा हुई दिल्ली की कैबिनेट हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्साह से लबरेज थी। उपराज्यपाल के साथ चल रही खींचतान के कारण बीते कई दिनों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिल्ली के दिल से दिल्ली को संबोधित किया।
तो पूरे दिल्ली के अंदर लोग महसूस तो कर रहे हैं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है बहुत सारे काम हुए हैं। मैं 2-3 मिनट बोलूंगा, उसके बाद हमारे एक एक मंत्री अपने काम की व्याख्या देंगे और उसके बाद मैं फिर आराम से आप लोगों से बात।
अरविंद केजरीवाल बात तो सरकार की उपलब्धियों पर करने आए थे, लेकिन उनकी बातों में बार बार उपराज्यपाल से चल रही तनातनी का असर दिखता रहा। उन्होंने कहा कि वो केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं, लेकिन अधिसूचना के जरिए तानाशाही सहन नहीं की जाएगी। घूस लेते हुए पकड़े गए एक पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उत्साह और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को बधाई दी और कहा कि जब ईश्वर उनके साथ है तो चिंता करने की जरूरत नहीं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है।
आम आदमी पार्टी कनॉट प्लेस की सभा में अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ आई थी। सभा के मंच पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव और शकुंतला गैमलिन भी मौजूद थी, जिनकी नियुक्ति को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद सभी विभागों के मंत्रियों ने बारी बारी से 10 दिनों में हुए कामकाज का ब्यौरा दिया और आगे के लिए अपनी योजनाएं सामने रखी। ये महज संयोग ही दिखता है कि जिस दिन दिल्ली सरकार अपने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा दे रही थी, उसी दिन दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर दूर मथुरा में प्रधानमंत्री देश के लोगों को अपने एक साल के काम का हिसाब किताब सुना रहे थे। मुख्यमंत्री के एजेंडे में अपने कामों के साथ ही निशाना केंद्र सरकार पर था, तो प्रधानमंत्री के एजेंडे में कामों के साथ विपक्ष और पिछली सरकार।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दिल्ली सरकार अपनी जीत की तरह देख रही है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद अधिकारों को लेकर उपराज्यपाल से चल रहे विवाद में दिल्ली सरकार के हाथ मजबूत होंगे। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ वकील सूरज सिंह से पूछा कि इस फैसले का एलजी और दिल्ली सरकार के विवाद पर क्या असर होगा।
सिवाय एंट्री 1, 2 एंड 18, एंट्री 1 में लॉ एंड ऑर्डर आता है, 2 में पुलिस आती है और 18 में लैंड आती है, इन 3 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी मामलों में जो राज्यपाल जी हैं वो मुख्यमंत्री और उनकी जो परिषद है उसकी एड एंड एडवाइस को मानने के लिए बाध्य हैं। तो वहाँ ये हाईकोर्ट का जजमेंट कानून संगत है और ये जो MHA का नोटिफिकेशन इस तरह का दिया गया है ये कानून संगत नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को जो कुछ कहा है इस बारे में, उससे क्या जाहिर होता है, जरा उसका विश्लेषण करिए कि किस आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया।
विपिन सांगी ने ये कहा है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय CM, वो गवर्नर को जब सलाह देते हैं उसके अनुसार सिविल सर्विसेज चलती है, तो यहाँ करप्शन के मामले में भी अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हेडेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्शन ली है तो उनको इस प्रकार का एक्शन करने का अधिकार है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो MHA का नोटिफिकेशन है कि ये सारी पावर सिविल सर्वेंट्स के बारे में सिर्फ गवर्नर को है, उस चीज को हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने कानून संगत नहीं माना है।
तो आपको क्या लगता है कि अब गेंद किसके पाले में?
शुरू में ही हम कह रहे थे कि अगर मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं तो वस्तुतः अगर वो सीरियस है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो तो वहाँ यूनियन की अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी पावर्स हैं और स्टेट की ऑटोनोमी को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। उधर जो राज्य है उसको भी ये ध्यान करना पड़ेगा कि एक राज्य के अलावा और राज्य भी हैं, तो कानून की समानता रहे इसलिए राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ जो है राज्यपाल ने अपनी शक्ति का अतिक्रमण किया, लेकिन साथ ही जो दिल्ली के CM है उनको भी देखना चाहिए कि ठीक है लोगों ने जरूर इलेक्ट करके भेजा है, लेकिन एक इसका सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जहाँ पावर है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ उन पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, अनलिमिटेड पावर किसी को भी नहीं है। ये जो सिंगल जज का जजमेंट है इससे जो है दिल्ली गवर्नमेंट को एक प्रोत्साहन मिलेगा और हो सकता है क्योंकि सिंगल जज का है इस केंद्र सरकार 2 जजों के सामने चैलेंज करे।
वहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को भी आज एक साल पूरा हो गया है। उनका अच्छे दिन का जुमला मजाक का शिकार भी बना और कुछ लोगों ने दावा किया कि वाकई अच्छे दिन आ गए हैं। BBC ने सरकार का एक साल पूरा होने पर अलग अलग वर्ग के लोगों से पूछा कि क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं। उद्योगपति और SOCHM की चेयरपर्सन भाग्येश सोनी जी का कहना है कि वाकई हालात बेहतर हुए हैं।
हमारा गुजरात में एक एक्सपीरियंस रहा है कि मोदी जी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट अच्छा करते हैं। और इस एक वर्ष में उन्होंने, अगर आप मेक इन इंडिया का स्लोगन ले लें, डिजिटल इंडिया ले लें, इन चीजों को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक वर्ष में शायद आइडियाज आ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म तक, वो आइडियाज काफी सारे एक वर्ष में मोदी सरकार ने थ्रो किए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट क्या आएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अभी सारी, अगर राज्य सरकारें कहें या केंद्रीय सरकार कहें, सारों ने एक सब्जेक्ट पे बहुत डिस्कशन शुरू किया हुआ है सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि क्या, कौन से परिवर्तन किए जाएं, कौन से इनिशिएटिव लिए जाएं ताकि उद्योगकारों को एक सहूलियत रहे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में, वो लोग ज्यादा समय लगा सकें, ना कि बिजनेस को एडमिनिस्टर करने में सरकारी महकमों के साथ।
तो उद्योग से जुड़े लोग तो मोदी सरकार को पूरे नंबर दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से नाराज लोगों की संख्या भी कम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की राय मोदी सरकार के बारे में सुनिए।
अब एक नेता पे कहने पर सब लोग चलते हैं, तो यदि हम इस किस्म के नेताओं की और इस किस्म की पद्धति के खिलाफ बोलते हैं, तो वो वंशवाद हो या लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में उठने लग गया है। पहले वाली सरकार ने भी गलत किया, हम उनके भी साथ नहीं है इस मामले में, मगर इनमें क्या कर रहे हैं जो बोलने वाले लोग हैं उनके जो आत्मनिर्भरता है उसको खत्म करना चाहते हैं। अब फॉरेन फंड को ये खत्म करना चाहते हैं, वो कोई हमारे देश को कोई हमला कर रहा है तो साफ आके बोले ना, हाथ हो क्या रहा है। ये सरकार तो पूरी ही बिक चुकी है आजकल, हम तो भारत सरकार या कंपनी राज में हमारे कोई फर्क नहीं नजर आता, तो खुद सरकार इतने विदेशी धन देती है तो फिर एनजीओ को कहना कि आप विदेशी धन देते हो, और वो तो उसका एक बहुत ही छोटा प्रतिशत आता है उनके पास, तो ये कोई मायने नहीं रखता। इनको तो साफ में मैदान में आके बोलना चाहिए देश पे कैसे हमला हो रहा है, देश का कैसा नुकसान हो रहा है, और इसके ऊपर पूरी वाद विवाद होनी चाहिए, पूरा संवाद होना चाहिए। तब हो सकता है कोई एक दो एनजीओ कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनको बंद किया जाए। ये सारे तौर तरीके अपना रहे हैं, मगर वो ये नहीं समझ रहे हैं इस भारत के धरती पे ये जो पद्धतियां हैं बहुत पुरानी है और निकालना बहुत मुश्किल है, और हम लोग रहेंगे और उनका उल्टा उनके ऊपर एक बहुत बुरा असर होने वाला है।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
फलस्तीन में लंबे समय तक चले संघर्ष की वजह से कई लोग इराक चले गए थे, लेकिन इराक के अस्थिरता के भंवर में फंसने के बाद ये लोग भारत आ रहे हैं। हालांकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी के इन फलस्तीनियों के लिए भारत में रहना इतना आसान भी नहीं। अमर शर्मा की खास रिपोर्ट।
Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open the mouth, ha, ha, ha.
ये थे 4 साल के आसिफ। इनका परिवार 4 महीने पहले इराक से दिल्ली आया। इनके चाचा मुस्तफा कहते हैं,
It's a safe place to live. There is no conflicts, no explosion, no.
भारत रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। यहाँ कोई संघर्ष नहीं चल रहा। यहाँ कोई बम धमाका नहीं होता रहता। आगजनी नहीं हो रही। गोलियां नहीं चल रही। यहाँ आपको ये डर नहीं है कि कहीं से भी आई गोली से आपकी मौत हो जाएगी। 38 साल की आलिया अपने 2 बच्चों के साथ 1 साल से दिल्ली में रह रही हैं। आलिया कहती हैं,
India more safe than Iraq. I found that my children.
इराक की तुलना में भारत बेहद सुरक्षित है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बच्चे अब इराक में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ उनकी जिंदगी खतरे में थी।
26 साल के अब्दुल्लाह इराक के बसरा में रहते थे। इराक में उन्हें अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था।
The situation was very bad in Iraq. I have no job.
इराक में हालात बहुत खराब है। वहाँ मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी।
दिल्ली में ये लोग सुकून से रह तो रहे हैं, लेकिन विदेशी पहचान की वजह से किराया और रोजमर्रा के सामान के लिए कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। मुस्तफा बताते हैं कि 1948 में उनका परिवार फलस्तीन से इराक चला गया था।
इराकी
सरकार ने पासपोर्ट के लिए हमारी अर्जी खारिज कर दी और कहा कि फलस्तीनियों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन फलस्तीन को मान्यता के बाद बगदाद में फलस्तीनी दूतावास में अर्जी के 4 महीने बाद हमारा पासपोर्ट बन गया।
एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल जून से अब तक करीब 20,000 इराकी भारत पहुंच चुके हैं, लेकिन दिल्ली में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR का दफ्तर ऐसे किसी आंकड़े की तस्दीक नहीं करता। दिल्ली में UNHCR की प्रवक्ता सुचिता मेहता कहती हैं कि जिन लोगों ने उनके पास शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए पंजीकरण कराया है वे सिर्फ उन्हीं के बारे में बता सकती हैं। हालांकि वे स्वीकार करती हैं कि मार्च 2014 से लेकर मार्च 2015 तक इराक से भारत पहुंचकर शरण मांगने वालों की संख्या में करीब 500% की दर से इजाफा हुआ है। नोएडा में रहने वाले 31 साल के अहमद यासीन मुही इराक से आए शरणार्थी हैं और दिल्ली में रहने वाले इराकियों की मदद के लिए एक वेबसाइट चलाते हैं।
On the name of the site, its name Helping Iraqis in Delhi. This is in English and in Arabic.
مساعدت العراقيين في دلهي.
اس ویب سائٹ کا نام ہے ہیلپنگ عراقیز ان دلہی. ویب سائٹ پر مدد مانگنے کے لیے ہر دن قریب 12 سے 13 سندیش آتے ہیں. کئی طرح کی جانکاریاں مانگی جاتی ہیں. 12 میں سے 10 سوال صرف اس بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ بھارت میں شرنارتھی کا درجہ کیسے مل سکتا ہے.
مصطفیٰ، عالیہ، عبداللہ، ان کے جیسے تیسری پیڑھی کے کئی فلسطینی عراق سے دلی پہنچ گئے ہیں. انہیں کبھی بھی کہیں کا بھی ناگرک نہیں مانا گیا. دلی ان کے لیے ایک ریٹائرنگ روم کی طرح ہے جہاں وہ انتظار میں سمے کاٹ رہے ہیں کہ کہیں انہیں ایک اچھی زندگی نصیب ہوگی کسی بھی دیش میں.
اور اب بات ان خبروں کی جن پر آج ہوگی نظر. بتا رہے ہیں سندیپ سونی.
پردھان منتری نریندر مودی کی سرکار کا آج ایک سال پورا ہو رہا ہے. اس موقع پر سرکار آج کچھ بڑی گھوشنائیں کر سکتی ہے. کیندر سرکار سے ادھیکاروں کے مدعے پر جاری تناتنی کے بیچ دلی میں آج سے ودھان سبھا کا وشیش ستر شروع ہو رہا ہے. مکھیمنتری کیجریوال دلی کو پورن راجیہ کا درجہ دینے اور دوسرے مدعوں پر کیندر کی مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے سکتے ہیں. کیندری وانجیہ منتری نرملا سیتا رمن آج الجیریا کے دورے پر روانہ ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ ایک کاروباری پرتنیدھی منڈل بھی الجیریا جا رہا ہے. ورش 2002 کے ہٹ اینڈ رن معاملے میں دوشی سلمان خان نے دبئی جانے کی انومتی مانگی ہے. سلمان کی یاچکا پر بامبے ہائی کورٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے. انتراشٹری خبروں میں سنیکت راشٹر مہا سچیو بان کی مون آج سے برسلز کا دورہ کر رہے ہیں. ان کا یہ دورہ ایسے سمے ہو رہا ہے جب یوروپی یونین بھومدھیہ ساگر میں پرواسیوں کو اویدھ طریقے سے لانے لے جانے والے تسکروں کے خلاف پرستاوت سین کاروائی کے لیے سنیکت راشٹر سرکشا پریشد کی منظوری کا انتظار کر رہا ہے. ادھر ناروے کی راجدھانی اوسلو میں آج سے ایک سمیلن شروع ہو رہا ہے جس میں میانمار میں 10 لاکھ سے ادھک روہنگیا مسلمانوں کی لگ بھگ ایک دشک سے جاری دردشا پر وچار ومرش کیا جائے گا. اس میں نوبیل شانتی پرسکار وجیتا ڈیسمنڈ ٹوٹو سمیت کئی ہستیاں شرکت کر رہی ہیں. کھیلوں کی خبروں میں پاکستان اور زمبابوے کے بیچ 3 ایک دیوسی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. پاکستان میں 6 ورش کے لمبے انترال کے بعد ایک دیوسی میچ کھیلا جا رہا ہے. ادھر فرینچ اوپن ٹینس میں رولاں گیارا کی لال بجری پر آج رافیل نڈال، نوواک جوکوویچ اور سیرینا ولیمز جیسے دگج کھلاڑیوں کے مقابلے ہوں گے.
اور اب وقت ہو گیا ہے اخباروں کی سمیکشا کا. سندیپ سونی اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں. سندیپ، کیا کہتے ہیں آج کے اخبار؟
انوراگ، انڈین ایکسپریس کے پہلے پنے پر داہنی اور سب سے اوپر چھپی خبر کا ذکر سب سے پہلے کرنا چاہوں گا، جس میں ان دو بھارتیوں کا نام ہے جن کا نام سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کالا دھن جمع کرنے کے معاملے میں سامنے آیا ہے. دونوں مہیلائیں ہیں. ان دو بھارتی مہیلاؤں کے ساتھ کئی انیہ دیشوں کے ناگرکوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں. یہ خبر اور بھی کئی اخباروں میں چھپی ہے. جی. اگلا اخبار دا ہندو دیکھتے ہیں. اس کے پہلے پنے پر دلی میں اروند کیجریوال کی ریلی کی بڑی تصویر ہے. تصویر سے جو شبد چھپے ہیں تصویر کے ساتھ، ان کا سار یہ ہے کہ دلی میں اروند کیجریوال سرکار نے اپنے حق کی لڑائی جیت لی ہے، اہم لڑائی جیت لی ہے. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دلی کی بھرشٹاچار نیرودھک شاخہ جو ہے وہ دلی پولیس کے کرمیوں کو گرفتار کرنے کا ادھیکار رکھتی ہے. ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ انوراگ ایسے سمے آیا ہے جب ادھیکاروں کے مدعے پر دلی سرکار اور کیندر سرکار میں تناتنی ہو رہی ہے. یعنی کیندر سرکار کو جھٹکا لگا ہے اور عام آدمی پارٹی کی سرکار کو راحت ملی ہے. دینک جاگرن نے اس خبر کو شیرشک دیا ہے، کیجری سرکار نے جیتی جنگ. دینک جاگرن نے ہی پردھان منتری مودی کی تصویر کے ساتھ ان کی متھرا ریلی کی خبر چھاپی ہے جس کی سرخی ہے ختم ہوئے دیش کے برے دن. یہ خبر تمام اخباروں میں ہے. اور انوراگ، ہندی انگریزی کا ایسا کوئی بھی اخبار نہیں ہے جس کے پہلے یا دوسرے یا تیسرے پنے پر مودی سرکار کی اپلبدھیوں کو گنانے والا وگیاپن نہ چھپا ہو. ہر اخبار میں وگیاپن چھپا ہے.
مودی کا ایک سندیش چھپا ہے
جس میں انہوں نے اپنی سرکار کی اپلبدھیاں گنائی ہیں. اور انوراگ، آپ کو پتا ہوگا کل سی بی ایس ای نے 12ویں ککشا کے نتیجے گھوشت کیے تھے. ان نتیجوں کی پڑتال کرتے ہوئے دینک بھاسکر نے لکھا ہے کہ 4 سال میں پہلی بار سی بی ایس ای کا 12ویں کا نتیجہ ایسا آیا ہے کہ اس میں تھوڑی گراوٹ آئی ہے. پچھلے سال کے مقابلے تھوڑے کم بچے پاس ہوئے ہیں، حالانکہ لڑکوں سے قریب 10% زیادہ لڑکیاں پاس ہوئی ہیں. خبر کے ساتھ چہکتی ہوئی لڑکیوں کی تصویر بھی چھپی ہے. जनसत्ता देखें तो अखबार ने प्रधानमंत्री मोदी के दावे को अपनी पहली खबर का शीर्षक बनाया है। मोदी ने दावा किया है घोटालों के किस्से खत्म हो गए हैं। इसके अलावा अनुराग, नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर राजा का बाजा शीर्षक से लिखा है कि भारत जैसे देश में चमक दमक ज्यादा दिन नहीं चलती, सरकार को जल्दी कुछ करना होगा वरना लोगों की राय बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भाजपा सरकार की एक साल की उपलब्धियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो लेकिन अगले चार साल की चुनौतियां कहीं ज़्यादा महत्व रखती हैं। नई दुनिया की बात करें तो यहाँ पर हरी जयसिंह का एक आलेख छपा है संपादकीय पन्ने पर, उसमें भी उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को ये बात याद रखनी चाहिए कि उन्हें चुनाव जिताने वाले उद्योगपति और NRI नहीं बल्कि देश के किसान और गरीब लोग हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी समीक्षा के लिए। बात खेलों की दुनिया की, इंग्लैंड ने दी न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त और रोलां गैरो की लाल बजरी पर किसको मिली हार और कौन पहुंचा अगले दौर में, खेल समाचारों के साथ आदेश कुमार गुप्त।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर कल हैरत अंगेज खेल दिखाते हुए न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 124 रन से करारी मात दी। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम अपनी टीम को ताकत देने के लिए IPL 8 के आखिरी मुकाबलों को छोड़कर इंग्लैंड पहुंचे थे। अब ना तो IPL 8 में उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल जीत सकी और ना ही उनकी अपनी टीम न्यूजीलैंड, जबकि पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड को 134 रन की महत्वपूर्ण बढ़त भी मिली थी, लेकिन जीत के लिए 345 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनकी टीम 220 रनों पर ढेर हो गई। कोरी एंडरसन ने 67 और बीजे वाटलिंग ने 59 रन बनाए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने 38 रन देकर 3 और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 50 रन देकर 3 विकेट लिए। वैसे मैच का पासा तब बदला जब इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक के 162 और बेन स्टोक्स के 101 रनों की मदद से इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 478 रन बनाए। बेन स्टोक्स मैन ऑफ द मैच भी रहे। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया इंग्लैंड की इस चमत्कारिक जीत को लेकर कहते हैं,
कप्तान ने एक शानदार पारी खेली सेकंड इनिंग के अंदर जिसकी वजह से सारे का सारा जो गेम का रुख था वो बदल गया, तो जीत से अच्छा कुछ नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये जीत एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है क्योंकि जब भी आप टेस्ट मैच क्रिकेट की बात करते हैं या अगर आप इतिहास में भी नजर डालेंगे तो मजबूत इंग्लैंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो आपको कभी कभी प्रभावित कर देती है लेकिन ऐसा नहीं है जो क्रिकेट बदल देती है।
उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल महिला एकल वर्ग में फ्रांस की एलिजे कॉर्नेट, क्रोएशिया की एजला तोमिलियानोविच, जर्मनी की सबीनी लिसिकी, स्पेन की कार्ला सुआरेज नुआरो, रोमानिया की अलेजांद्रो डुलगेरू, फ्रांस की अमांडीने हेसे और ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टूसर तथा जर्मनी की एंजेलिक कर्बर अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रही। उधर पुरुष एकल वर्ग में चेक खिलाड़ी टॉमस बर्डिच ने जापान के योशितो निशियोका को 6-0, 7-5, 6-3 से, स्लोवाकिया के मार्टिन किल्जान ने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोई को 6-2, 6-1, 6-4 से और इटली के फेबियो फोगनिनी ने जापान के तात्सुमा इतो को 6-3, 6-2, 6-2 से हराया। इनके अलावा ब्राजील के टामाज बुलुची भी पहले दौर का मुकाबला जीतने में कामयाब रहे।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर संदीप सोनी से।
BBC समाचार। नेपाल में विनाशकारी भूकंप के एक महीने बाद भी मदद के लिए जरूरी रकम नहीं जुटने पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। नेपाल के वित्त मंत्री रामशरण महत ने बीबीसी से कहा कि उनके देश को विदेशों से सिर्फ 10% राशि मिली है जबकि 90% राशि नेपाली लोगों ने ही जुटाई है। चीन ने साउथ चाइना सी के ऊपर अमरीका के खुफिया विमान की मौजूदगी पर अमरीका से अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अमरीका के दक्षिण पश्चिमी इलाकों और उत्तरी मैक्सिको में चक्रवाती तूफान की वजह से कम 19 लोग मारे गए हैं। रूस की सेना एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही है जिसमें लगभग 250 विमान हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यूरोपीय यूनियन कमीशन के अध्यक्ष जीन क्लॉड जंकर से मुलाकात करके यूरोपीय यूनियन में सुधार के मुद्दे पर चर्चा की है। बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष ब्लॉग लिखने वालों पर हमले के आरोप में एक इस्लामी चरमपंथी समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व के सबसे महंगे फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने अपने कोच कार्लो एंचेलोत्ती को बर्खास्त कर दिया है। क्लब का कहना है कि कार्लो इस सत्र में टीम को कोई भी प्रमुख ट्रॉफी नहीं जीता सके, इसलिए उन्हें पद से हटाया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत की पहली सभा यहीं समाप्त हुई। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। 8 बजे फिर होगी मुलाकात। अनुराग शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।